आज कल
प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। स्वाति और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार करें। आज हम मुसील में दाइश की तथाकथित इस्लामी सरकार के परिणामों पर चर्चा करेंगे।
इराक में आतंकवादी संगठन दाइश की तथाकथित खिलाफत और सरकार मुसील पर इराकी सेना के कब्जे के साथ ही खत्म हो गई, लेकिन ये शासन और खिलाफत मुसील और इराकी जनता के लिए बहुत महंगी साबित हुई। इराक में दाइश के 3 वर्षीय भयानक काल का सबसे अधिक दुखदायी पहलू इराक के विभिन्न क्षेत्रों में मानवता के खिलाफ अपराध रहा है। आज की इस कड़ी में इसी विषय पर चर्चा करेंगे।
मानवता के खिलाफ अपराध की परिभाषा सबसे पहले सन 1915 में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस की ओर से इस्तेमाल की गई, और इन देशों ने यह शब्द तुर्की की तत्कालीन सरकार द्वारा आर्मीनियाई जंग संहार की आलोचना में इस्तेमाल किया गया था। सन 1945 में पहली बार नूरनबर्ग न्यायालय में मानवता के विरुद्ध अपराध के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। नूरनबर्ग अदालत के घोषणा पत्र के अनुसार युद्ध से पहले या बाद में जनसंहार, विनाश, दास बनाना, देश निकाला देना तथा इसी प्रकार विशेष राजनीतिक, धार्मिक या जातीय समुदाय को निशाना बनाना मानवता के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में है। भूतपूर्व युगोस्लाविया की अंतर्राष्ट्रीय अदालत के घोषणा पत्र के 5वें अनुच्छेद में भी मानवता के विरुद्ध अपराध को परिभाषित किया गया है, और नूरनबर्ग की अदालत के घोषणा पत्र में जिन अपराधों का उल्लेख किया है उनके अलावा इस घोषणा पत्र में कैद में रखने, यातना देने और बलात्कार को भी मानवता के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन मानवता के विरुद्ध अपराध की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के घोषणा पत्र के 7वें अनुच्छेद में इस तरह से की गई है। मानवता के विरुद्ध अपराध से आशय निम्नलिखित कार्रवाइयां हैं जो संगठित रूप से असैनिकों के खिलाफ एक व्यापक हमले में की जाए और हमला करने वालों को इसका ज्ञान भी हो। वह कार्रवाइयां इस प्रकार यह है।
हत्या, जाति सफाया जैसे किसी विशिष्ट समुदाय को जड़ से खत्म करने के लिए उन्हें खाने पीने और दवा से वंचित करना, दास बनाना, किसी ऐसे समुदाय को जबरदस्ती किसी इलाके से बाहर निकालना जहां वो कानूनी तरीके से रह रहा हो और उसको वहां से खदेड़ना अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन हो, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विपरीत किसी को कैद करना या उसे शारीरिक आज़ादी से वंचित करना, यातना देना, बलात्कार, यौन शोषण, जबरदस्ती, वेश्यावृत्ति, गर्भधारण करने पर मजबूर करना, जबरदस्ती बांझ बनाना या किसी भी प्रकार की शारीरिक हिंसा, राजनीतिक, जातीय, राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, धार्मिक या लैंगिक कारणों से किसी विशेष समुदाय को परेशान और दंडित करना, अपहरण, नस्ली भेदभाव, आम नागरिकों पर संगठित व व्यापक हमला, किसी व्यक्ति को भारी शारीरिक या मानसिक पीड़ा पहुंचाने के लिए जानबूझकर किया जाने वाला हर काम।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के घोषणा पत्र के 7वें अनुच्छेद में जो कुछ मानवता के विरुद्ध अपराध के रूप में आया है, इराक में 3 वर्षों के अपने शासन के दौरान दाइश ने वह सब कुछ किया है। दाइश ने मुसील में मानवता के विरुद्ध अपराध का अत्यंत भयानक रूप दिखाया, और इसी तरह इराक के दूसरे इलाकों में भी बार बार इस तरह के अपराधों को दोहराया। यह सब कुछ निश्चित रूप से मानवता के विरुद्ध अपराध था, लेकिन मानवता के विरुद्ध अपराध का यह रूप शायद ही विश्व में किसी ने पहले देखा हो। लोगों को लाइन में खड़ा करके उनके सिर में गोली मारना, पिंजरे में बंद करने, जिंदा जलाना, बिजली के आरे से इंसानों को काटना, सिर काटना और जिंदा दफन कर देना, वह अपराध हैं जो दाइश ने इराकी जनता के हक में किए हैं।
इराकी नागरिकों को दाइश के आतंकवादियों ने यातना भी इस प्रकार से दी है कि जिन पर इंसानियत कांप जाती है। हाथ पैर काटना और अंधा कर देना भी इन यातनाओं में शामिल है। दाइश के आतंकवादियों ने इराक में अपनी उपस्थिति के दौरान इराकी महिलाओं और लड़कियों का व्यापक स्तर पर अत्यधिक हिंसक रूप में यौन शोषण किया और आज दाइश के आतंकवादियों द्वारा सामूहिक व व्यक्तिगत बलात्कार के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे इराकी समाज के लिए एक समस्या बन चुके हैं। ये बच्चे अपनी माँ को पहचानते हैं लेकिन उनकी माँ उन्हें उनके पिता के बारे में कुछ नहीं बता सकती।
किसी इलाके से जबरदस्ती भगाना भी मानवता के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में है और इराक में अपनी उपस्थिति के दौरान दाइश के आतंकवादियों ने व्यापक स्तर पर यह अपराध किया है। इज़दी समुदाय के लोगों को जिस तरह से दाइश ने निशाना बनाया है वह इस प्रकार के अपराध का अत्यधिक भयानक रूप है। दाइश के आतंकवादियों ने सन 2014 के अगस्त के महीने में इराक के सेंजार इलाके पर हमला किया। यह इज़दी समुदाय के लोगों का क्षेत्र था। इस क्षेत्र पर हमले के बाद दाइश के आतंकवादियों ने पुरुषों को मार डाला और महिलाओं और लड़कियों को बंदी बना लिया। इन आतंकवादियों के हाथ से जान बचाकर भागने वालों ने सेंजार के पहाड़ों में शरण ली जहां बहुत से लोग भूख और प्यास से मर गए। इस भयानक त्रासदी की रिपोर्ट मीडिया में आई और फोटो व वीडियो क्लिप दिखाए गए जिससे पूरी दुनिया में दाइश की दहशत फैल गई और दाइश का एक मकसद पूरा हो गया।
दाइश ने इसी प्रकार इंसानों को ढाल के रूप में प्रयोग करने का घिनौना अपराध भी किया है। दाइश के आतंकवादी जहां भी इराकी सैनिकों के घेरे में फंस जाते वहां से निकलने के लिए वो इराकी नागरिकों को मानव ढाल के रूप में प्रयोग करते थे जिसकी वजह से मारे जाने वाले इराकी नागरिकों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। दाइश के आतंकवादी भय व आतंक फैलाने के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में धमाके करते थे जो मारे जाने वाले इराकी नागरिकों की संख्या में वृद्धि का एक अन्य कारण है।
इराक में 3 वर्षों तक दाइश की तथाकथित खिलाफत के दौरान मारे जाने वाले लोगों की सही संख्या का तो पता नहीं है कि जुलाई सन 2017 में यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में यह जरूर बताया गया है कि इराक में दाइश की 3 वर्षों की उपस्थिति के दौरान 1,075 बच्चे मारे गए। इसके अलावा 1,130 बच्चे शरीर के किसी अंग से वंचित या घायल हुए। सन 2016 के अंत तक 4,03,00,000 लोग युद्ध की वजह से अपने ही देश में बेघर हुए जिनमें से 3 करोड़ इराकी थे जो दाइश के आतंकवादियों की वजह से विस्थापित हुए थे। केवल सन 2016 में ही 6,60,000 इराकी घर छोड़ने पर मजबूर हुए।
इराक के बहुत से क्षेत्रों पर दाइश के 3 वर्षों के कब्जे के दौरान इंसानियत की मौत हुई और शायद आगामी कई पीढ़ियां भी इस तरह से भयानक अपराध न देखें। काश दुनिया में इतना इंसाफ होता कि वो इस तरह के भयानक जुर्म करने वालों और उनके समर्थकों को अदालत में खड़ा करती और उनसे ये अहम सवाल पूछती कि दाइश को पैदा और उनका समर्थन करके तथा इंसानियत को इस तरह से शर्मसार करके वो कौन सा मकसद पूरा करना चाहते हैं।